समीक्षणाद् विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च सधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन साम् ध्यानयोगेन साम् ध्यानयोगेन साम् ध्यान योग के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है और उस ज्ञान निष्ठा का रूप है सर्वत्र अपनी आत्मा को दर्शन करना, समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में उसको पहचानना। देखो आगे जो सातवें सूत्र है ना, उसमें ये बात बड़े स्पष्टता से कह दिया ज्ञान विज्ञान योग का, ब्रह्मैव सर्वम् इति ज्ञातव्यम्। उसका विस्तार भगवान ने वहां पर किया। तो यहां पर हम लोग जिस छठे अध्याय के दो श्लोक पर विचार हुआ, 29 और 30, और इस षष्ठ अध्याय में प्रतिपादित ध्यान योग का जो लक्ष्य है वो अद्वैत दर्शन है, अद्वैत अनुभूति है, एक सत्ता को अनुभव करना, वो स्पष्ट हो जाती है। 29वें श्लोक में आत्मा शब्द का प्रयोग किया, सर्वभूतस्थम आत्मानम्, अपने में सब भूतों में स्थित अपने आप को देखना और सबको अपने में देखना, आत्मा शब्द का प्रयोग है। आत्मा शब्द से आप अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं और आत्मा शब्द का उद्देश्य भी यही है, प्रयोग करना कि आप स्वयं को सब में देखें और सब को अपने में देखें। दूसरे श्लोक में, 30वें श्लोक में आत्मा शब्द की जगह पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं उसको रख करके भगवान कह रहे हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह पश्यति, सर्वत्र सर्वत्र पश्यति, मेरे को सर्वत्र देखता है और सबको मेरे में देखता है, सर्वम च मई पश्यति। तो ये जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण तो पूर्व श्लोक का ही अनुवाद है, वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन यहां पर आत्मा शब्द की जगह पर मुझे ईश्वर उपदेश दे रहे हैं, मुझको जो सब जगह देखता है और सबको मेरे में देखता है, सबको आत्मा में देखना, सबको मेरे में देखना, तो ये क्या दो अलग अलग सत्ता मालूम पड़ रही है? तो कैसे होगा अगर सब आत्मा में है और ईश्वर आत्मा से भिन्न है, तो सबको आप आत्मा में ईश्वर में कैसे देखोगे? और यदि सबका आश्रय ईश्वर है और आप उससे भिन्न हैं, तो सबको अपने में कैसे देखोगे? तो इसका तात्पर्य यह है, जो सब की आत्मा है और जिसमें सब कुछ स्थित है, उस आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है। तो आत्मेश्वर एकत्व का यहां पर स्पष्टतः प्रतिपादन हो रहा है। दूसरी बात देखिए, यहां पर किसी वस्तु को जब आप किसी में स्थित देखते हैं, तो हम लोगों का प्रायः क्या होता है, जैसे ये मेरे हाथ में ये चीज है, ऐसा आश्रय आश्रयी भाव माने आधार आधेय भाव से हम चीजों को समझते हैं। जैसे हम आप लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं या पृथ्वी पर हैं, ऐसा समझते हैं। तो क्या इस प्रकार से ये सारे चीज आत्मा में ऐसे रखा है या ईश्वर में ऐसे रखा है, ऐसा समझने की बात हो रही है? तो ऐसा समझेंगे तो इसमें एक गड़बड़ी ये है कि अगर ये यहां पर रखा है तो अभी अगले क्षण वो वहां पर चला जाएगा। अगर इसकी सत्ता इंडिपेंडेंट है आश्रय से, तो वो सदा एक जगह रहने के लिए बाध्य, तो निरंतर आश्रय उसका बदलेगा। जैसे आप यहां पर इस समय प्रेमपुरी की भूमि पर हैं, आए हैं घर से, उस समय घर में थे, तो एक जगह तो नहीं रहते हैं, लेकिन यहां पर तो कह रहे हैं कि ये सारे वस्तु सब कुछ आत्मा में है, ईश्वर में है, तो क्या अगले क्षण वो कहीं और चले जाएंगे, ऐसा वर्णन है? नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं, वस्तु तो ये पदार्थ भी हमारे हाथ में स्थित नहीं है, माने हाथ में रहने न रहने से इसका बहुत कुछ बिगड़ता बनता नहीं है। तो ये किसमें है, किसने इसको पकड़ रखा है, इसका जो उपादान कारण है, मूल मेटल है वो, ठीक है, उपादान कारण ही किसी कार्य पदार्थ का आश्रय होता है। वस्तुतः तरंगों का आश्रय जल ही होगा, घड़े का आश्रय मिट्टी ही होगा, वस्त्र का आश्रय धागे ही होंगे, वो और कहीं जा सकते नहीं है, ऐसा आश्रय। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत का आश्रय कौन होगा, जो इस संपूर्ण जगत का मूल मटेरियल है, मूल कारण है, और वो मूल कारण, अब उसका नाम आत्मा रखिए, उसका नाम ईश्वर रखिए, उसका नाम ब्रह्म रखिए, उसका नाम सद्वस्तु रखिए, नाम से हमारा कोई विशेष आग्रह, हमको तो वस्तु से सत्ता से सत्य से हमको आग्रह होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वो व्यक्ति सबको आत्मा में देखता है, यानी सबके कारण के रूप में वो अपने आत्मा को अनुभव करता है, और वो सबका जो कारण माने उपादान कारण आत्मा है, उसी को भगवान कह रहे कि वो मैं हूं। सबका जो कारण है वही तो मैं हूं, माने ईश्वर की परिभाषा ही तो ये है ना। ईश्वरत्व क्या है? जन्माद्यस्य भैया, जिससे सब बने, जिसमें सब टिके हो और जिसमें ही विलीन हो जाए। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जब एक ही बात है तो भगवान ये भिन्न करके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप जो है किसी ना किसी रूप में बचने की और बचाने की कोशिश करते हो कि आत्मा अलग और ईश्वर अलग, तो वो आपके रास्ता बंद करने के लिए माने भेद भ्रांति मिटाने के लिए भगवान ने प्रयोग किया। इसलिए उपनिषदों में भी यही शैली है। कभी तो ईश्वर की सत्ता से, ईश्वर के वर्णन से शुरू करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम् इस ढंग की बात करते हैं, और उपसंहार में जाकर के आत्मा की बात कर देते हैं। कहीं पर आत्मा से शुरू करते हैं और उपसंहार में जाकर के उसको ईश्वर बता देते हैं। ये दोनों प्रकार की शैली हैं, और दोनों प्रकार की शैली असल में विचार के या साधकों के दो प्रकृति के अनुसार हैं। कोई अपने से शुरू करते हैं और ईश्वर में पहुंचते हैं, माने दृष्टा दृश्य का विवेक करके फिर उस मूल दृष्टा को सबके कारण के रूप में समझते हैं, तो ईश्वर हो गए। और कोई पहले जो है ईश्वरीय सत्ता से शुरू करते हैं और वो ईश्वर को खोजते खोजते अपने आत्मा के रूप में उनको मिल जाता है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अरे ब्रह्म ईश्वर कौन है उसी को समझना, जो तुम अपने से भिन्न करके यह करके उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म वस्तुतः नहीं है, वो तो अनिदम पदार्थ है। तो ये दोनों शैली मिलती हैं, और लगभग इसी प्रकार का वर्णन छांदोग्य में सातवें अध्याय पर भूमा विद्या के प्रसंग में देवर्षि नारद को समझाते हुए भगवान सनत कुमार जी ने यही शैली अपनाया। भूमा क्या है? भूमा माने ब्रह्म का ही दूसरा नाम समझो। कहा भूमा क्या है? जिससे श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं, जिसको जानने से अधिक और कुछ नहीं, जिसको पाने से अधिक और कुछ नहीं, वो भूमा क्या है? तो भूमा का लक्षण बताया, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। नारद जी, जहां पर यत्र अन्यत न पश्यति, दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं देखता। इस समय आप दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, बड़ी स्पष्टता से देख रहे हैं। मैं तो इधर बैठा हूं, दूसरे सब उधर बैठे हैं। तो इसके ये जो भूमि है, ये द्वैत भूमि है, ये भूमा की भूमि, ये अल्प अल्पता की परिच्छिन्नता की भूमि है। इस समय हमारी चेतना यहां पर है। भूमा क्या है? जहां पर दूसरे को नहीं देखता। कहा कि महाराज ये तो फिर बढ़िया अच्छा है, आंख बंद कर लिया दूसरा नहीं दिखेगा। हाँ, और अगर सूरदास जी की तरह बहुत अर्घ हो, आप में पैशन हो, तो आंखें ही फोड़ दे कि दूसरा आगे से कभी देखे ही ना, हैं? भूमा बन जाओगे। आंख बंद करने से दूसरा दिखता है कि नहीं दिखता है, बताओ तो, ईमानदारी से बताओ। आंख बंद करके क्या देखते हैं? अरे भैया, कम से कम अंधेरा तो देखते ही हो, हैं? तो अपने से भिन्न और जगत हैं, चीजें हैं, ये जो फीलिंग है आपकी, ये जो चेतना है, इससे आप मुक्त थोड़े होते हो, नहीं होते हो। दूसरा दिखता है, आंख बंद करके भी दिखता है, बल्कि अपने शरीर को दिखता है, अपनी प्राण के व्यापारों को दिखता है, देखते हैं, और मन की वृत्तियों को आप देखते हैं, अहंकार को देखते हैं, तो दूसरा तो कोई कम चीज है कि आंख बंद करने से भी भीतर तो अपना सारा जगत ही दिखता है महाराज। हैं? बल्कि बाहर जितना दिखता है उससे तो ज्यादा आप भीतर ही देख लेते हो। तो आंख बंद करने की बात नहीं, आंख फोड़ने की बात नहीं। तो यत्र नान्यत् पश्यति का अर्थ है, जहां पर अन्येन ज्ञानेन न पश्यति, तीन का निषेध हो जाता है न अन्यत से। देखने वाला भिन्न नहीं, देखा जाने वाला भिन्न नहीं, और देखना ये भिन्न नहीं, माने त्रिपुटी होती है ना, दृष्टा दृश्य दर्शन। तो ये दृष्टा अलग, दृश्य अलग, और इनका देखना अनुभव ये अलग। इस समय हम इस भूमि पर हैं, और ये तीनों के भीतर जब एक अखंड सत्ता आपको नजर आए, एक अखंड सत्ता की अनुभूति हो, इसका वर्णन हमने किया है, लेकिन ये बार बार करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि बड़ी रहस्य की बात है, और ऐसी बात कह रहे हैं कि जिसकी कल्पना भी शायद हम लोग नहीं कर पाते, सामान्य ये सब बातें ना पढ़े तो, पढ़ने के बाद भी कल्पना ठीक से नहीं होती है तो बात क्या कहा जाए। तो ये बड़ी मिस्टिकल चीज है, व्यक्ति अपने आप को ट्रांसेंड करता है ना, वो स्वयं को अतिक्रमण करना है। तो दृष्टा दृश्य और दर्शन, इन तीनों की भिन्नता का निषेध कर दिया एक, लेकिन यह नहीं कहा कि जहां कुछ नहीं दिखता है, बड़ी विचित्र बात है ना। भूमा क्या है? जहां दूसरा नहीं दिखता, दूसरे शब्द में जहां सब कुछ एक अखंड सत्ता रूप में अनुभव होता है। सर्वम च मई पश्यति, सब की सत्ता, समस्त तरंगों की सत्ता जल से अतिरिक्त नहीं है। और ये अखंड सत्ता को देखना कैसे होगा? कहा कि तो सब खंड खंड दिख रहा है, नाम रूप सब दिख रहे हैं। कम से कम नाम रूप देखना बंद हो जाए तब होगा। तो सुषुप्ति में तो नाम रूप देखना बंद हो जाता है, वो भी भूमा की अनुभूति नहीं है। वो सुषुप्ति भी ये परिच्छिन्नता की भूमि पर ही है, अज्ञान से ढका हुआ। अज्ञान की अनुभूति तो है ना वहां पर, तो इसलिए वो भी भूमा की अनुभूति नहीं है। द्वैत का आदर्शन तो है लेकिन अद्वैत दर्शन, ध्यान में आई बात, वहां पर सुषुप्ति में आप दूसरे को देखते नहीं हो लेकिन अद्वैत की अनुभूति वो भी, और है भी तो रिकॉग्निशन नहीं है, माने अज्ञान से ढका हुआ अद्वैत की अनुभूति है। और जब आपको अज्ञान भी ना रहे ना तब, इसीलिए सुषुप्ति की अनुभूति से कोई कृतार्थ नहीं हो जाता है। तो वो अद्वैत की अनुभूति, लेकिन अद्वैत की अनुभूति का वो अज्ञान से आवृत अनुभव होने से अज्ञान नष्ट नहीं होता। तो भैया आपको न आंख फोड़ना होगा न नाम रूप को तोड़ना होगा, हाँ? फिर भी अद्वैत की अनुभूति होगी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुना रहे थे, बोल रहे थे, अब कुछ दिन पहले हमारे कान में आया शब्द, बड़ा अच्छा प्यारा लगा। कहा कि भैया सोने को देखने के लिए कंगन को तोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। तो बनाना बिगाड़ना ये अलग चीज है। बनाने से बिगाड़ने से, बिगाड़ने के साथ में सुवर्णत्व का अनुभव का कोई संबंध है? वो कंगन है तब भी आप सोना उसको देख सकते हो, हार बन गया तब भी आप सोना देख सकते हो। तो आकार जिस आश्रय में, जिस प्रकाश में प्रतिभासमान है, उसका विवेक मात्र होना है, यहां पर जोड़ना तोड़ना नहीं है। और जोड़ना तोड़ना थोड़ा आसान है, ये विवेक ही जो है यही जो है मुश्किल हो जाता है। एक तो विश्वास ही नहीं होता कि इतना आसान है, समझे ना। तो ये दृष्टा दृश्य दर्शन, जिस भूमि पर आप हैं इस समय, आप मैं और ये अनुभूति, ये सारा एक सत्ता कहो, एक ज्ञान कहो, उससे प्रकाश पा रहे हैं, उसके सत्ता में है। अभी अवधेश जी कल सुना रहे थे वहां पर आपके स्पिरिचुअल सेंटर में, मांडविक को सुना रहे हैं ना, अलात शांति। तो उसका मंगलाचरण श्लोक ही बड़ा विलक्षण आया, ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मन यो गगनोपमन ज्ञेया भिन्नेन संबुद्ध स्तंभंदे द्विपदां वरम। बड़ा प्यारा लगता है हमको जाना, जिसने जाना वो है संबुद्ध। संबुद्ध माने सम्यक जान लिया, जग गए। बुद्ध माने प्रबुद्ध, जिसे बोलते ना, नींद से जग गए। आप लोग नींद से जगे हैं ना? अरे भैया नहीं तो ये सब क्यों सुनाने का प्रयास हो तो कहा कि कौन जगे हैं, कौन संबुद्ध है? कहा कि ज्ञानेन आकाशकल्पेन, आकाश के समान, आकाश भी उससे छोटा ही पड़ता है, ऐसे सर्वत्र व्याप्त ज्ञान के द्वारा, माने उनका ज्ञान अपरिच्छिन्न है। हमारा ज्ञान तो क्या होता है ना, जैसे इसको देखा फिर इसको देखा, तो ये ज्ञान जो है छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में ना वृत्ति होती है। तो उनका ज्ञान कैसा है? आकाश के समान फैला हुआ ज्ञान। और निश्चित रूप से वो ज्ञान पैदा होगा नहीं,
क्योंकि जो फायदा होगा वो छोटा मोटा ही होगा ना। आप प्रयास करके जो ज्ञान पैदा करोगे वो इतना आकाश के समान बड़ा होगा। तो इसका एक रहस्य ये है कि वो ज्ञान इस समय आपके साथ है, ज्ञान सदा है आपके साथ में, नित्य ज्ञान है वो। तो ज्ञानेन आकाशकल्पेन, अच्छा उस आकाशकल्प ज्ञान से, आकाश के समान व्याप्त ज्ञान से किसको जाना? कहा कि धर्मान यो गगनोपमन, धर्मों को जाना उन्होंने। और धर्म शब्द का यहां पर जीव आत्मा अर्थ में प्रयोग है। क्यों? धर्म शब्द का मूल अर्थ होता है, धातुगत अर्थ होता है धारक, जो धारण करता है ना। धी धातु से कर्ता अर्थ में मन प्रत्यय करता है तो धर्म बनता है। इसका अर्थ होता है जिसने सब कुछ धारण करके रखा है। तो धारक, और यहां पर कम से कम सामान्य रूप से एक व्यक्ति को जितने सब ज्ञान अनुभूतियां कर्म उसके फल वो सब आपके भीतर होता है ना, आप ही धारण करते हो ना, तो इसीलिए ये धर्म माने जीवात्मा। तो धर्मों को जाना, ध्यान दीजिए, उसने आकाशकल्प ज्ञान से जीवात्मा को या जीवों को अनुभव किया। बोले जीव कितने बड़े हैं? जीव गगनोपमन, ये सारे जीव जो हैं आकाश के समान ही अनंत है। तो आकाश के समान ज्ञान से, आकाश के समान अनंत आत्मा को उन्होंने जाना। तो कहा कि ये कैसे होगा? इसका मतलब है कि आकाश दो चार हो सकता है क्या? तो इसका मतलब है कि महाराज आप ये बता रहे हो कि ये जो ज्ञाता है जीव, ज्ञाता और जो ज्ञान है ये एक हो गया तभी ऐसा जानेगा ना। कहा कि हां, लेकिन फिर भी ज्ञेयों का क्या हुआ? फिर ज्ञेय पदार्थ अलग रह गया। तो कह रहे कि ज्ञा अभिन्नेन संबुद्ध, उन ज्ञाता को, ज्ञाताओं को ज्ञेय से अभिन्न रूप से जाना। तो क्या हो गया? देखो, ज्ञान आकाश के समान है, ज्ञाता आकाश के समान है और ज्ञेय उससे अभिन्न है, अर्थात ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है। ऐसा जो जानते हैं वो जो है दो पैरों से चलने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, माने मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। तंग वंदे द्विपदाम्बरम, उनको हम वंदना करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गौड़पादाचार्य जी को ना तो नारायण ऋषि ने उपदेश किया बद्रीनाथ में। नर नारायण अवतार है ना, मनुष्य रूप में भगवान आए हुए हैं और हमारे कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। तो नारायण ऋषि की वंदना की, जो प्रबुद्ध हैं संबुद्ध हैं उनको हम वंदना करते हैं। और अंतिम में जाकर के कहेंगे कि नमस्कार करते हैं जथा बलम, क्योंकि नमस्कार यदि संभव है तो किया जाए, माने वो स्वयं भी तो अपने आप को उसके साथ अभिन्न समझ रहे हैं ना। तो नमस्कुर्मो जथा बलम, माने हम अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार नमस्कार कर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि उससे अभिन्नता की अनुभूति ही आपकी अंतिम नमस्कार हो गया, और इस अंतिम नमस्कार के बाद और नमस्कार करने की जरूरत नहीं रहती है और न किया जा सकता है। तो अखंड दर्शन, अद्वैत दर्शन, इसका यहां पर भगवान ने उपदेश किया। सर्वम च मयि पश्यति। अब इस अखंडता को दृष्टा दृश्य दर्शन इस अखंडता को सनत कुमार जी ने कैसे उपदेश किया, आगे चल करके कहते हैं। देखो नारद जी, स एव अधस्तात् स उपरिष्टात्, वही नीचे हैं, वही ऊपर हैं, वही सामने हैं, पुरस्तात् पश्चात् दक्षिणत उत्तरत स एव इदगुम सर्वम, सब दिशा में वही हैं सर्वत्र और वही सब कुछ है। स एव इदगुम सर्वम, जो कुछ है सब वही है। स शब्द से प्रयोग किया वो, फिर अथात अहंकारादेश, स शब्द के बाद कहीं सुनने वालों को यह न लगे कि वो उसकी बात हो रही है ना, तो फिर अहम शब्द से कहा, अहम एव अधस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम पुरस्तात् अहम पश्चात् अहम दक्षिणत उत्तरत अहम एव इदगुम सर्व, एकदम सारी बातें खाली अहंकार पद से। अब उसका अनुभव कैसा हो रहा है, मैं ही ऊपर मैं ही, पहले वो अब मैं ही ऊपर मैं ही नीचे, मैं ही आगे मैं ही पीछे, मैं ही दक्षिण मैं ही उत्तर, मैं ही सब कुछ हूं। फिर ये सोचा कि ना समझ गड़बड़ करने वाले गड़बड़ करेंगे, वो क्या करेंगे, ये जो अहंकार परिच्छिन्न एक सत्ता है ना, उसकी कल्पना से सब जगह देखने की कोशिश करेंगे और असल में जो सब जगह सदा विद्यमान है उसको नहीं देखेंगे। हम लोग ऐसा करते ही हैं, तो उसके लिए फिर अंतिम बार में उपदेश दे रहे वही बात, बिल्कुल उन्हीं शब्दों को, आत्मा एव अधस्तात् आत्मा उपरिष्टात्, आत्मा ही ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र और सब है। तो इसलिए ये उपदेश दे रहे हैं, जो सर्वत्र सदा विद्यमान है उस तत्व को अनुभव करो और सारे नाम रूप उसमें भासित हो रहे हैं। कैसे, सब कुछ उसमें स्थित कैसे हैं, तो जैसे दर्पण में सारे प्रतिबिंब दिखता है, एक दर्पण रखा है, निश्चिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भम बृहद वियत, पंचदशी की पंक्ति है, सच्चित सुखे तथा भाति वस्तु गर्भम बृहद वियत। देखो एक निश्चिद्र दर्पण है जिसमें छेद नहीं है और उसको आपने बाहर ओपन प्लेस में रख दिया, तो वस्तु गर्भ वस्तुओं के साथ माने ये सूरज बादल और ये सब के साथ में पूरा आकाश उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, बहुत बड़ा दर्पण है। अब उसके भीतर सब दिख रहा है, उसके भीतर है कि नहीं है, दर्पण के भीतर, दर्पण के भीतर जैसे दिखता है, इसी प्रकार महाराज आत्मदर्पण में सच्चित सुखे तथा भाति ये सब कुछ दिख रहा है, वस्तु गर्भम ये आकाश के साथ ये पूरा जगत उसमें दर्पण में प्रतिबिंब के समान ही प्रतिबिंबित हैं और प्रतिबिंबों की अलग सत्ता कहीं भी छुओ तो हाथ में क्या आएगा, आकाश को छूने की कोशिश करो बादल की छूने की कोशिश करो क्या हाथ में आएगा, दर्पण ही दर्पण आएगा है ना। इसी अनुभूति को भगवान शंकराचार्य जी ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में पिरोया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि
मायया बहिर्वोद भूतं यथा निद्रयाम् यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
विश्वम्, ये पूरा विश्व दर्पण में दृश्यमान नगरी के समान अपने ही भीतर दिख रहा है, अपनी आत्मसत्ता में ही ये सब दिख रहा है। निजांतरगतम कहा गया, हमको तो महाराज बाहर लग रहा है। पश्यन् आत्मनि, देख तो अपने में ही रहे हो। मायया बहिर्वोद भूतम्, माया से, यही माया है जो आपके भीतर होते हुए आपसे बाहर ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप कितने बड़े हो बताओ, कितने बड़े हैं आप महाराज, आप तो ब्रह्म ही हैं। और ये बड़े डंके के चोट हमारे सारे आचार्य जो भगवान जैसे कह रहे हैं, गौड़पादाचार्य जी जैसे कह रहे हैं, शंकराचार्य जी जैसे कह रहे हैं, ये सब थोड़े ऐसे कोई हवा हवाई बात आप समझ रहे हैं क्या? ये हकीकत है, इट इज रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी, यही सच्चा है। जैसे जो आप सपना देखते हैं, आपको अपने से भिन्न लगता है, लेकिन वो सारे आपकी चेतना में ही होती हैं और कहीं होती नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर भी नहीं होता। अगर शरीर के भीतर कहीं वो होता तो शरीर ही फूट जाता, इतने बड़े हाथी घोड़े सारे दुनिया बना लेते उसमें, तो शरीर में नहीं होता है वो, आपके कॉन्शियसनेस में ही होता है सारा सपना की जगत। तो इसी प्रकार आत्मसत्ता में ये मैं आप ये सब कुछ प्रतिबिंबित हैं, और इस प्रकार से जो अनुभव कर लेता है, सर्वम च मई पश्यति, सबको मेरे में देखता है, मुझसे अभिन्न जानता है, उसका फल बताया, तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेन, वो कभी मेरे से, मेरे आंखों से बाहर नहीं होता, और मैं भी उसके आंखों से, मैंने उसकी दृष्टि से बाहर नहीं होता हूं। अर्थात ये एक ऐसी अनुभूति है, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वरीय सत्ता या ब्रह्मात्मिकत्व की अनुभूति, जिस अनुभूति की चर्चा यहां है, ये अनुभूति एक बार होने पर कभी भी इसका विलोप नहीं होता। ध्यान दीजिए, ये बड़ी विलक्षण चीज है। आप समाधि में बैठ करके कुछ अनुभव करते हो, तो जब आप बुद्धित होते हो तो उसकी स्मृति रहती है, वो अनुभूति नहीं होती। ईश्वर का अनुभव व्यक्ति ध्यान में हो या भाव में हो, भक्ति में करते हैं, फिर जब नॉर्मल होते हैं तो वो अनुभूति साथ नहीं होती है, क्योंकि वो तो विशेष वृत्ति के एक विशेष दशा में ही आप अनुभव करते हो। ये सब करते 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 जब चरम अनुभूति में पहुंचोगे तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तब समझना कि काम पूरा हुआ। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी प्रनष्ट नहीं होता हूं, माने परोक्ष नहीं होता हूं, दूर नहीं होता हूं। हाँ, और मेरे लिए भी वो कभी दूर नहीं होता है। कितना बढ़िया, कितना बड़ा प्रेम का यहां प्रकाश हो रहा है महाराज, है ना? और भगवान ने हम सबको ऐसे पकड़ करके रखा है, उठा करके रखा है, इसको खाली इंटेलेक्चुअली ऐसा देखने की कोशिश करने से कोई बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं होगा। ये एक फीलिंग होनी चाहिए। एक भक्त ने मुझे लिखा एक पत्र, बड़ा सुंदर। तो उन्होंने लिखा कि मैं आसन में जाकर के बैठी, जैसे आप भजन के लिए बैठते हो डेली, और कहा कि मुझे लगा कि हमको हमें ब्रह्म में बैठना है। आसन असल में क्या है, कोई वस्त्र में नहीं बैठना है, तो शरीर बैठता है, लेकिन मुझे कहां बैठना है, परमात्मा में। और जब बैठी तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं अपनी मां के गोद में बैठती हूं, बचपन में बैठती थी, कितने निश्चिंत और प्रसन्न, ऐसा लगा कि हम उनके गोद में हैं। और जो मां के गोद में होता है उसको कोई चिंता होती है? कोई चिंता नहीं। तो जब आसन में बैठो, और आसन शुद्धि का मतलब यही होता है, आसन में बैठते हुए ना पूजा जब करते हैं तो एक आसन शुद्धि का मंत्र हम लोग बोलते हैं, और हमारे जो कर्मकांड जो बोलते हैं ना, पूजा पाठ, इन सब में इतनी डिवाइनिटी है और इतनी इतने एनर्जेटिक हैं ये सब। अगर आपका दिल थोड़ा इसके साथ में हो ना तो आपको क्लिक कर जाए। हम लोग तो बड़े मैकेनिकल करते हैं हर चीज, मंत्र भी बोल देते हैं, लेकिन उसके साथ में कोई हमारी फीलिंग नहीं होती है ना। इसीलिए भक्ति करते हुए, वेदांत पढ़ते हुए भी हमको जो ऐसा लगता है कि हमारे खालीपन है, भर नहीं रहा है, असल में हम होते नहीं उनके साथ में ना, समस्या ये है। तो उनके साथ कभी हो जाए तो आपको वो मैजिकल टच मालूम पड़ता है, उसको किसी ने छुया आपको। तो आसन शुद्धि में क्या है, देखो, धरती मां को नमस्कार करते हैं, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमं नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्। पृथ्वी, ये जो संबोधन है, कभी आपने धरती मां को बुलाया, पुकारा पृथ्वी? बोला भी होगा तो उनको तो डेड मैटर समझ करके ही बोला होगा पृथ्वी, लेकिन जब संबोधन होता है, एड्रेस होता है किसी को, तो माने सामने वाला वो समझ रहा है, फील कर रहा है, रेस्पॉन्स करने वाला है, ऐसा समझ करके ना हम बोलते हैं। तो पृथ्वी, ये पृथ्वी शी कैन फील अस, वो हम सब लोगों को अपने गोद में ली हुई है। ये फीलिंग होना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति मां के गोद में भी बैठा और उसको पता नहीं है मां के गोद में हो, तो उसका वो जो आनंद है, वो जो प्रशांति है, वो नहीं होगा, उसको तो अपना टेंशन रहेगा ही। तो है पृथ्वी, धरती मां, त्वया धृता लोका, तुमने सबको अपने गोद में ले रखी हो। त्वया धृता लोका, तुमने धारण कर रखा है, ऐसा जब आसन में बैठो और आसन शुद्धि करो तो पृथ्वी के साथ जोड़ो ना और फील करो अपने ये जो कम से कम बॉडी वेट अपने शरीर को अनुभव करते हैं ना। कल्पना मत करो, हम लोग शरीर हमारी जो है ना इमेजिनेशन में हम बहुत ज्यादा चले जाते हैं ना, फील करने की बात हो रही है। इसलिए योग की प्रक्रिया भी है कि भैया अपने पैरों के अंगूठे से लेकर के अपने अनुभव को दौड़ाओ, देखो कैसे 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 तुम्हारा पैर कैसे रखा है, कहीं दर्द तो नहीं है, ऐसा करके ये फीलिंग करने की बात हो रही है, बॉडी फीलिंग, बॉडी कॉन्शियसनेस। और इसके जो वेट है ये कैसे धरती पर बैठी है और उस पृथ्वी के साथ में उनकी चेतना के साथ अपने को जुड़ी है। पृथ्वी तया धृता लोका। अच्छा, अब आगे देखो, पृथ्वी कहां पर टिकी है, पृथ्वी को किसने धारण किया, क्योंकि पृथ्वी तो अनंत नहीं है, पृथ्वी को किसने धारण किया। बोले पृथ्वी तो आसमान में लटक रहा है, हैं? जल में तो पृथ्वी जो है ये आसमान में लटक रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है कि नहीं। अरे भैया आसमान में लटके कैसे, किसने उसको पकड़ रखा है। आप कहोगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सारे यूनिवर्स को उसने पकड़ रखा है ना। लेकिन ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को किसने पकड़ रखा है, तो ये जो धरती है इसको जिस महान शक्ति ने पकड़ रखा है, और धरती खाली नहीं, धरती खाली इतनी धरती नहीं है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड को जिसने धारण कर रखा है। जैसे मैंने कहा था आपको, समस्त तरंगों को किसने धारण कर रखा है, ओ सर्वत्र व्याप्त वो विष्णु सत्ता, विष्णु का अर्थ ही होता है व्यापनात् विष्णु, उस अनंत ने, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, अनंत। एक सांप के रूप की कल्पना की, मैंने एक रूप दिया, सांप तो क्या है देखो, सर्प माने तुम्हारे ऐसा सर्प थोड़ा ही है जिसने पृथ्वी को उठा रखा है, सूर्य को उठा रखा है, सबको धारण कर रखा है, उनके कितने फण होगा, माने उस शक्ति के कितने विशिष्ट प्रकाश होगा तब ना उठा करके रखेगा। तो जो इन्फाइनाइट है, अनंत है, विष्णु है, उस परम सत्ता इस समस्त चीजों को धारण कर रखा और मेरे मुझे को मुझे भी गोद में उठाए रखा है। लेकिन ये खाली बाहर से नहीं, फीलिंग करो, ये जो ईगो है, ये जो मैं, ये मैं इससे बाहर कहीं जा नहीं सकता, कोई तरंग जल से अलग हो सकता है, इसी प्रकार मैं कभी उससे अलग हो ही नहीं सकता हूं। ये मेरी सत्ता उन्हीं की सत्ता से है, जैसे वस्त्र धागे से अलग नहीं हो सकता, इसी प्रकार मैं उस विष्णु सत्ता से अलग नहीं हूं, इसलिए मैं सदा उनमें बैठी हूं। कुछ उस भक्त के भाव, कुछ मैंने अपने भाव जोड़ के आपको बताया, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया देखो, मेडिटेशन मेडिटेशन तो बहुत आजकल क्रेज है, लेकिन मेडिटेशन तो कितने रास्ते हैं, खाली आसन शुद्धि में ही अगर आप इसी को देखो कि आसन में बैठो, धरती के साथ जोड़ो और उस अनंत के साथ जुड़ जाओ, बस इसका नाम मेडिटेशन है। सर्वम च मही पश्यति, सब को मेरे में देखता है और वो कभी मेरे आंखों से ओझल नहीं होता, और वो मुझे कभी अपने आंखों से ओझल नहीं करते, दूर नहीं जाने देते। ऐसे योगी को स्वाभाविक रूप से मोक्ष मिल जाता है, ये भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में। और एक मिनट में उसको भी कर देता हूं, फिर थोड़ी ध्यान की और प्रक्रियाओं का वर्णन करेंगे कल से। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं, सबके भीतर बाहर अवस्थित मेरे के मुझके मेरे साथ माम एकत्वम आस्थितः यो भजति, अपने आप को एक करके अभिन्न करके जो भजन करता है, माने इस अद्वैत अनुभूति में रहना ही भजन है। उनका भजन कोई अलग क्रिया नहीं है। भजन क्या है? भजन एक खाली थॉट तो जो है थोड़ी बाहरी चीज है। भजन जो है, भक्ति जो है, एक फीलिंग है कि मैं भगवान के साथ हूं। और वो जितना ऑनेस्ट फीलिंग होगा आपकी भक्ति उतनी प्योर होगी। तो मैं आपके साथ हूं, आपके साथ एक हूं, इस अनुभूति में जो जी रहा है ज्ञानी, उससे बड़ा भक्त इसलिए और कोई नहीं होता है। ऐसा भक्ति, अद्वैत भक्ति जो करता है, भजति एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि, वो चाहे बाहरी आचरण उसका कैसा भी हो, सर्वथा वर्तमानोपि, वो सो रहा है, जाग रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, लड़ाई कर रहा है, सर्वथा, कोई कंडीशन नहीं, वर्तमानोपि स योगी मैं वर्तते, वो हमेशा मेरे में ही है, मुझसे वो बाहर जाता ही नहीं है। ऐसे जो परम ज्ञानियों के कितने दिव्य वर्णन हमारे परंपरा में मिलती हैं और दिखाया है, कैसे कैसे ज्ञानी रहते हुए भी परम ज्ञानी हैं। कल एक आध उदाहरण दृष्टांत उनके जीवन का आनंद लेंगे, आज ही पूरा करते। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।